अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार प्रवचन सत्र में हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के द्वितीय प्रश्न का विचार कल संपन्न हुआ। तृतीय प्रश्न रूप तृतीय प्रकरण का विचार प्रारंभ होना है। द्वितीय तथा तृतीय इन दो प्रश्नों के माध्यम से अपरा विद्या का जो उपासनात्मक अंश है उसका स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है। यहां अनेकों प्रकार की उपासनाएं उपनिषदों में आती हैं, उनमें से प्राण की उपासना को उदाहरण के रूप से बताया जा रहा है। उपासना का अर्थ होता है उपास्य के गुणों का चिंतन। उपास्य बताया जा रहा है प्राण को। उपास्य कहा जाता है जिसकी उपासना की जा रही है उसे, और उपासना होगा उसके गुणों का चिंतन। इसलिए प्राणों के गुणों का वर्णन द्वितीय प्रश्न में हुआ। प्राण की उपासना सिद्ध करने के लिए प्राण के अनेक गुण बताए गए कि प्राण ही सर्वात्मा है, सर्वाश्रय है, सबका संरक्षक है, वही सब में वागादि के स्थिति का हेतु है, वही इस लोक के तथा परलोक के भोगों का स्वामी है, उसी के आश्रित संपूर्ण जगत है। जैसे रथनाभि में रथ के अरे आश्रित होते हैं, ऐसे सारा जगत प्राण के आश्रित है। प्राण सर्वाश्रय है, प्राण ही सबको देता है सुख, तो सुखदात्रित्व तो ही प्राण में है। ऐसे अनेक गुण प्राण के द्वितीय प्रश्न के उत्तर का निर्धारण करते हुए आचार्य पिपला जी ने बताए। द्वितीय प्रश्न था भार्गव वैदर्भी का, जो आचार्य पिपला जी के पास छह ऋषि पहुंचे हैं उनमें से कबंधी नाम के ऋषि ने तो पहला प्रश्न किया, वह था अपरा विद्या के फल विषय को। अपरा विद्या के फल का निरूपण होने के बाद उन छह ऋषियों में से ये भार्गव नाम के ऋषि ने प्राणों के उपासना उपयोगी गुणों का जिससे निरूपण हो सके ऐसा प्रश्न किया, और उन वैदर्भी भार्गव के द्वारा किए गए दो प्रश्नों का उत्तर देते हुए, तीन प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये कहा गया कि मुख्य प्राण में ये गुण है। अब इन गुणों का आश्रयभूत जो प्राण है ये उपास्य है, इसके उत्पत्ति आदि को बताते हुए उपासना का विधान करने के लिए तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरे प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं कौशल्य नाम के ऋषि। इसलिए कौशल्य नाम के ऋषि का यह तीसरा प्रश्न है। इस तीसरे प्रश्न के अंदर अवांतर अलग अलग छह प्रश्न हैं। तो तीसरे प्रकरण का प्रश्नात्मक जो प्रथम वाक्य है, प्रथम कंडिकात्मक, इसे देखा जाए। अथ हैनम कौशल्यश्चास्वलायन पप्रच्छ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम इति। इस प्रकार भगवन् कुत एष प्राणो जायते यहां से लेकर के कथम अध्यात्मम यहां तक छह प्रश्न छोटे छोटे किए हैं कौशल्य ऋषि ने आचार्य पिपलाद जी से। इनमें ये जो अथ शब्द है इसका अर्थ है अनंतर। यह अनंतर ये बताएगा किसका, तो भार्गव के प्रश्न के उत्तर के अनंतर, ये इस अथ शब्द का अर्थ होगा। आचार्य पिपलाद जी ने भार्गव के प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उसके बाद कौशल्य ऋषि जिज्ञासा करते हैं। कौशल्य का एक विशेषण है अश्वलायन, ये अश्वल गोत्रीय है इसलिए इन्हें अश्वलायन कहा जाता है और कौशल्य उनका नाम है। उन्होंने पप्रच्छ का अर्थ है प्रश्न किए, पूछा। तो भगवन् कुत एष प्राणो जायते, तो हे भगवन् ऐसा आचार्य पिपलाद जी को संबोधित करके कौशल्य कहते हैं कि एष प्राण कुत जायते, कि एष ये सर्वनाम है प्रकृत अर्थ का परामर्शक, और प्रकृत है द्वितीय प्रश्न और तृतीय प्रश्न मिलकर के एक महाप्रकरण है प्राण उपासना का, इसलिए द्वितीय प्रश्नात्मक प्रकरण में जिसको प्रजापतित्वादि गुणों से युक्त बताया गया उसे कहा जाएगा प्रकृत अर्थ। प्रजापतित्व अत्रित्वादि गुण बताए गए हैं प्राण में, इसलिए प्राण को कहा जाएगा प्रकृत, और एषः शब्द इसी प्राण का परामर्शक होगा। ये बताएगा कि यह जो अत्रित्व प्रजापतित्व वरिष्ठत्वादि अनेक गुणों का आश्रय रूप प्राण है, यह प्राण अनादि नहीं है। दो पदार्थ होते हैं, कुछ अनादि होते हैं कुछ सादि होते हैं। अनादि तो दो ही हैं, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। यह जो गीता वाक्य है यह बता रहा है एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। प्रकृति यानी त्रिगुणात्मिका माया मूल अविद्या, वह अनादि है उत्पन्न नहीं होती, और पुरुष यानी आत्मा इसकी भी उत्पत्ति नहीं होती। न जायते म्रियते वा इत्यादि वाक्य ने कहा उसका जन्म नहीं होता, उत्पत्ति यानी जन्म। तो ये दो ही अनादि हैं और इन दोनों में भी एक शांत है एक अनंत है। प्रकृति अनादि तो है लेकिन शांत है। अंत कहते हैं विनाश को, ये उत्पन्न नहीं होती, इसका जन्म नहीं होता लेकिन मृत्यु होती है प्रकृति की, इसलिए इसे अनादि शांत कहा जाता है। इसकी मृत्यु कब होती है? प्रकृति का निर्वाण दिन कब आता है? जिस दिन ब्रह्मज्ञान होगा उसी समय उसका नाश होता है। प्रकृति का अज्ञान का ध्वंस होता है ना, अज्ञान ही प्रकृति है और उसका ध्वंसक है, विनाशक है ब्रह्मज्ञान। इसलिए उसे कहा जाएगा अनादि शांत और पुरुष को कहा जाएगा अनादि अनंत। पुरुष यानी आत्मा और आत्मा का कभी जैसे जन्म नहीं होता ऐसा कभी अंत भी नहीं होता। पुरुष का अंत होगा, आत्मा का यदि अंत होगा तो जगत का भी अंत होता है, प्रकृति का भी अंत होता है और पुरुष का भी अंत होगा तो सर्वम शून्यम हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा ना, तो शून्य तो नहीं है। इसलिए पुरुष अनादि अनंत है, प्रकृति अनादि शांत है और इन दोनों को छोड़ करके जो भी है वो सादि शांत है। प्रकृति और पुरुष तो अनादि है और बाकी जितने भी हैं सब सादि हैं। सादि में आदि शब्द का अर्थ होता है जन्म लेने वाले, उत्पत्ति, सादि यानी उत्पत्ति, और वह जिनकी होती है उन्हें सादि कहा जाता है। जैसे अंत जिसका होता है उसे शांत कहते हैं, ऐसे आदि यानी उत्पत्ति जन्म जिसका होगा उसे कहा जाएगा सादि। तो प्रकृति और पुरुष को छोड़ करके सबका जन्म होता है, तो सबका जन्म होने से वे सब के सब सादि होंगे और जो भी जन्म लेंगे तो उनका कोई न कोई कारण होगा, बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होता ना। किसी की उत्पत्ति हो रही है तो जरूर उसको उत्पन्न करने वाला कोई न कोई है। तो ये जो प्राण है जिसकी उपासना बताई जा रही है, जिसमें पहले प्रजापतित्व अत्रित्व वरिष्ठत्व आदि अनेक गुणों का वर्णन हुआ द्वितीय प्रकरण में, वह पुरुष रूप है या ये प्रकृति रूप है? ये दो तो अनादि हैं, जो अनादि दो पदार्थ हैं इनमें से प्राण को पुरुष कहा जाएगा या प्रकृति कहा जाएगा? तो इनमें से कोई भी नहीं है, न पुरुष है प्राण, पुरुष यानी आत्मा, और प्रकृति यानी माया। तो प्राण तो पुरुष भी नहीं प्रकृति भी नहीं है, इसलिए इन दोनों से अनादि दो पदार्थों से विलक्षण है, भिन्न है। तो जो इन दोनों से अलग होगा उसे कार्य रूप माना जाएगा, सादि माना जाएगा, उत्पन्न होता है माना जाएगा। तो प्राण भी सादि पदार्थ हुआ, ये दो ही अनादि हैं। तो इन दो में से एक रूप भी प्राण नहीं है तो निश्चित उसे माना जाएगा फिर सादि पदार्थों कोटि में आने वाला। तो ये जो सादि हैं उनका कोई न कोई उत्पादक होता है, कारण होता है, इसलिए प्राण यदि सादि है तो जरूर उसका कोई न कोई कारण होगा, किसी न किसी से वह उत्पन्न होता है यह मानना पड़ेगा। तो प्राण किससे उत्पन्न होता है, प्राण का कारण कौन है, जिस कारण से प्राण उत्पन्न होता है, ये पूछा गया प्रथम प्रश्न के रूप में कौशल्य के द्वारा कि एषः कुतः एषः प्राणो जायते। ये अत्रित्वादि अनेक गुणों से युक्त जो प्रकृत प्राण है, यह प्रकृति और पुरुष से विलक्षण होने के कारण यह सादि होगा। सादि होगा तो फिर किस कारण से यह उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण कौन है, इसका उत्पादक कौन पिता है, इसके पिता का नाम पूछा जा रहा है, किससे उत्पन्न हुआ है प्राण, एक प्रथम प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है कि उत्पन्न होकर के वह कहीं और क्यों नहीं रहता, इस शरीर में आता है, शरीर धारण करता है, तो शरीर धारण करता है तो शरीर धारण करने में भी उसका कोई न कोई निमित्त होगा कि जिससे उत्पन्न होता है वो कौन है, और फिर उससे उत्पन्न होकर के उत्पन्न हुआ प्राण कथम आयाति अस्मिन शरीरे। ये दूसरा प्रश्न है कि ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर प्राण का प्रवेश किस निमित्त से होता है, वो निमित्त कौन है प्राण को शरीर में प्रविष्ट करने का, नहीं तो इस छोटे से परिमाण वाले शरीर में कौन रहना चाहेगा, खूब इधर उधर आकाश में घूम जाता, प्रवास कर लेता, शरीर में आकर के क्यों बनता है, क्यों रहता है, इसके कौन, इसको इस शरीर में प्रविष्ट कौन कराता है, ये द्वितीय प्रश्न के द्वारा पूछा गया। तात्पर्य हुआ कि प्राण के शरीर धारण में निमित्त कौन है, दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है कि आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, और इस शरीर में प्रविष्ट होकर के फिर यह प्राण अपने को भी, प्राण अपान व्यान उदान आदि जो पांच वृत्ति भेद हैं, इन पांच विभागों में विभक्त करके और बाकी जो वागादि इंद्रियां हैं उनको भी अपने अपने अलग अलग स्थानों में, गोलकों में स्थापित कर देता है, सब इंद्रियों को रहने के लिए एक ही कमरा नहीं देता है कि इस एक ही हॉल में बैठ करके अपना अपना वर्क करते जाओ, ऐसा नहीं करता। इस शरीर में प्रधान है प्राण, और उस प्राण के साथ प्रविष्ट हुई दस बाह्य इंद्रिया भी और अंतर इंद्रिय मन भी, और इन ग्यारह को वह एक ही कमरे में प्रविष्ट नहीं कराता, इस शरीर में अलग अलग अपना अपना ऑफिस दे देता है, वो गोलक है इनके, तो इनको अपने अपने स्थानों में विभक्त करके चक्षु को अपना जो गोलक है, बाह्य चर्म चक्षु जो दिखता है, नेत्र इंद्रिय तो नहीं दिखता है ना, जो दिखता है वो है नेत्र इंद्रिय का गोलक, गोलक यानी ऑफिस कार्यालय, इसी में रह करके वो रूप ग्रहण कर पाता है। ऐसे घ्राण को अपने गोलक में, श्रोत्र इंद्रिय को अपने गोलक में, वाग इंद्रिय को अपने गोलक में, रसन इंद्रिय को अपने गोलक में अलग अलग स्थान देता है, वहां भेज करके स्थापित कर देता है, नियुक्त कर देता है। वो कौन है यानी कैसे करता है, ये पूछा गया। और आत्मानंच, अपने आप को भी इस शरीर में केवल एक प्राण रूप से ही न रख करके और चार वृत्तियां विभक्त रूप में करके अपने चार भेद करके स्वयं एक और बाकी चार ऐसे पांच इस शरीर में प्रतिष्ठित होता है। वो को कैसे करता है, किस निमित्त से करता है, ये पूछा गया कि आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते। तो वा ये निपात है, निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से यहां पर चक्षुरादि इंद्रिय रूप अर्थ लेना इसका वा का। आत्मानं का तो अर्थ हुआ स्वयं अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करके, और वा से ले लेना चक्षुरादियों को भी। इस प्रकार सबको अपने अपने स्थानों में स्थापित करके इस शरीर में कैसे रहता है, शरीर में रहने का निमित्त क्या है उसका, और फिर एक बार एक शरीर में प्रविष्ट हुआ तो हमेशा के लिए वहीं नहीं रहता, इस शरीर से निकल भी जाता है, तो शरीर से निकलने में क्या निमित्त है उसे पूछते हैं कि केन उत्क्रमते। उत्क्रमण है शरीर से प्राण का निकलना, तो किस निमित्त से इस शरीर से वह उत्क्रमण कर लेता है, ये हो गया चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न है कथम बाह्यम अभिधत्ते। तो बाह्य शब्द से लेना ये अधिभूत तथा अध्यात्म विभागों में विभक्त जो दो प्रकार का जगत है, उन दो प्रकार के बाह्य और अधिदैव, बाह्य शब्द से अधिभूत अधिदैव, ये दो प्रकार का जगत, इन दोनों प्रकार के जगत को यह प्राण कैसे धारण करता है, कथम अभिधत्ते, और कथम अध्यात्मम। तो अध्यात्म का भी विधारण करता प्राण कैसे बनता है, सबको धारण करके रखने वाला प्राण है ना, तो सबके तो अवान्तर तीन भेद हैं, अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म। बाह्य शब्द से अधिभूत और अधिदैव का ग्रहण करके पंचम प्रश्न के रूप में पूछा गया कि अधिभूत अधिदैव का विधारण किस प्रकार करता है, और अध्यात्म जगत का, अध्यात्म जगत होता है यह शरीर और शरीर के अभ्यंतर जो भी है उसे अध्यात्म कहा जाता है, और शरीर से बाह्य जो भौतिक जगत है उसे कहा जाता है अधिभूत, और जो इन भौतिक का अधिष्ठाता जगत है उसे कहा जाता है अधिदैव जगत। तो इस अधिदैव जगत का तथा अध्यात्म जगत अधिभूत जगत का भी कैसे विधारण करता है, और अध्यात्म जगत का भी विधारण यह प्राण कैसे करता है, ये छह प्रश्न कौशल्य नाम के ऋषि ने किए हैं आचार्य पिपलाद जी से। इन छह प्रश्नों का उत्तर जो होगा तो फिर इसमें मुख्य प्राण की उत्पत्ति आदि भी स्पष्ट हो जाएंगे और उसकी उपासना का भी विधान होगा। यहां तो सबसे पहले तो ये कौशल्य ऋषि के प्रश्न की प्रशंसा करते हैं आचार्य पिपलाद जी, कौशल्य ऋषि की प्रशंसा करके उनके प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विस्तार से चरित्र का वर्णन करने के लिए कहा, कई एक प्रश्न किए उनके जीवन चरित्र के विषय में, तो उन प्रश्नों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये प्रश्न तो गंगा जी के तरह है, पवित्र है, गंगा जी पवित्र है, वो तीन को पवित्र करती है, गंगा जी का दर्शन करने वाले को स्पर्शन करने वाले को और गोता लगाने वाले को, तीनों को भी पवित्र कर दिया। ऐसे ये जो भगवत चर्चा जिन प्रश्नों के माध्यम से होती है, सुखदेव जी कहते हैं एक तो वक्ता उसका उत्तर देगा तो भगवत चर्चा करने से उसकी वाणी पवित्र होती है, वह पवित्र होता है। प्रश्नकर्ता ध्यान देकर के प्रश्न का उत्तर सुनेगा, वह भी पवित्र होता है, और साथ में बैठे हुए बाकी श्रोता भी पवित्र होते हैं। तो ऐसे प्रश्न की प्रशंसा जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित के की, ऐसे आचार्य पिपलाद जी भी द्वितीय कंडिका में प्रशंसा करते हैं कौशल्य के प्रश्न की। तस्मै सहोवाच अति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसि इति तस्मात्ते अहम् ब्रवीमि। तो ये कौशल्य को आचार्य पिपलाद जी कह रहे हैं, तस्मै शब्द से लेना, ये प्राण के उत्पत्ति विषयक प्रश्न करने वाले कौशल्य, और उन्हें स यानि आचार्य पिपलाद जी ने वाच यानि कहा, क्या कहा कि अति प्रश्नान् पृच्छसि, तुम अति प्रश्न कर रहे हो। अति प्रश्न कर रहे हो का अर्थ ये है कि पहले जो दो ऋषियों ने प्रश्न किए हैं, कबंधी ने और भार्गव ने, इनके प्रश्न का विषय स्थूल था, कर्म फल विषयक यानी अपर विद्या के फल विषयक प्रश्न किया, उससे थोड़ा कबंधी ने और भार्गव ने प्राण के गुणों के विषय में प्रश्न किया है, इसलिए वो प्राण आश्रित गुणों के विषय प्रश्न को माना जाएगा, थोड़ा कबंधी के प्रश्न के विषय की अपेक्षा सूक्ष्म विषय वाला, और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय विषय प्रश्न होता जाएगा उसे कहा जाता है अति प्रश्न। तो पूर्ववर्ती जो दो ऋषि हैं उनकी दृष्टि तो सहसा मुख्य प्राण के स्वरूप पर भी नहीं गई, कर्मफल के विषय में कबंधी की दृष्टि गई और प्राण आश्रित गुणों पर दृष्टि गई भार्गव की, और ये जो कौशल्य है यह तो प्राण तत्वों के भी उत्पादक के ओर अपने दृष्टि को ले जा रहे हैं, तो सहसा प्राण को समझना भी कठिन होता है, जिसकी बुद्धि हमेशा बाहर ही विचरण करती रहती है। बहिर्मुख इंद्रिया भगवान ने बनाई है, परांच खानी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। यह कठोपनिषद वाक्य बताता है कि परमेश्वर ने हमारे पास ज्ञान के साधन के रूप में जिन इंद्रियों को दिया है उनका स्वभाव है बहिर्मुख, वो स्वयं बाहर ही जाती है और मन को भी बाहर ही ले जाती रहती है, और तस्मात यानी ज्ञान के साधन बहिर्मुख होने से स्वभावतः हमें बाह्य पदार्थों का ही ज्ञान होता है, और बाह्य पदार्थ है स्थूल, इसलिए स्वभावतः जीव स्थूल ग्राही है, स्थूल में विचरण करता है, और योग शास्त्र के अनुसार चित्त की जो पांच भूमिकाएं होती हैं उनमें से अधिकतर लोक चित्त की प्रथम और द्वितीय भूमिका वाले होते हैं, तृतीय भूमिका भी वाले बहुत कम होते हैं और चतुर्थ पंचम भूमिका में पहुंचे हुए तो माने जाते हैं अंगुली पर गिनने लायक कोई कोई मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित् एतत् सिद्ध है। वो पांच भूमिकाएं हैं मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। ये चित्त की पांच भूमिकाएं योग शास्त्र में मानी हैं। उनमें से स्थूल और सूक्ष्म का जिन्हें कोई विवेक ही नहीं है, अविवेक है जिनके चित्त में, इसलिए खाली स्थूल ही स्थूल दिखता है, सूक्ष्म को आवृत्त करके रखता है स्थूल जगत, और उस आवरण के अभ्यंतर जो स्थूल से आवृत्त सूक्ष्म है उस पर दृष्टि आवरण का भेदन करके जाने के लिए थोड़ी विशेष चाहिए ना, तो आवरण पर ही यानी स्थूल पर ही ज्यादा दृष्टि जिनकी रहती है, स्थूल और सूक्ष्म का कोई विवेक नहीं है चित्त में जिनके, उनके चित्त को कहा जाता है मूढ़ चित्त, मोहग्रस्त चित्त। मोह है अविवेक, और अविवेक से युक्त चित्त है उसे कहा गया मूढ़ चित्त, उसमें रहने वाला धर्म है मूढ़ता, चित्त की ये मूढ़ भूमि है, मूढ़ अवस्था है, उसे स्थूल में ही फिर वो विचरण करेगा। जैसे ही नींद खुलेगी तो नींद खुलते ही स्थूल शरीर मैं के रूप में और मेरे यानी ममास्पद के रूप में ये सारा स्थूल जगत ही दिखेगा। बाह्य शब्दित जो अधिभौतिक है उस अधिभौतिक जगत में ही ज्यादा से ज्यादा विचरण होगा, अध्यात्म के रूप में ये स्थूल जगत में यानी स्थूल शरीर में मैं के रूप में रहेगा, इदम के रूप में अधिभूत जगत में रहेगा। वो है मूढ़ भूमिका वाले लोग, तो ज्यादा से ज्यादा यही दिखते हैं, और नहीं तो दूसरी एक भूमिका होती है क्षिप्त। क्षिप्त भूमिका वाले का भी चित्त हमेशा मूढ़ वाले का या तो नींद में या तो शरीर आदि में रहता है, और शरीर आदि में बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाता, समष्टि का विचार नहीं कर पाता स्थूल में भी। और विक्षिप्त जो चित्त वाले हैं वे हाँ मूढ़ एक स्थूल जगत में ही स्थूल शरीर में ही मैं के रूप में रहेंगे, नींद में चले जाएंगे यहां आएंगे और बाहर जगत में रहेंगे, उनको विवेक नहीं होगा। और क्षिप्त भूमिका वाले भी ये रहेंगे, क्षिप्त भूमिका में जिनका चित्त है वे भी बाहर ही बाहर विचरण करते रहेंगे, बाहर का ही जगत दिखेगा, लेकिन थोड़ा ये रहेगा कि यहां अंदर भी कोई जगत है लेकिन उस पर पहुंच उनकी नहीं होगी, स्थूल से अलग सूक्ष्म जगत भी होता है ये उनका चित्त स्वीकार करता है, लेकिन उस सूक्ष्म जगत में पहुंचने की अर्हता उसमें नहीं है, इसलिए स्थूल ही स्थूल में विचरण करता है। तो ये हो गया विक्षिप्त क्षिप्त भूमिका वालों का चित्त, उसमें सूक्ष्म जगत का अस्तित्व का निश्चय तो है लेकिन उस सूक्ष्म जगत के ओर जाना चाहिए और उसके लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए, वो करने की अर्हता नहीं होती, मान लेता है सूक्ष्म तो ये मूढ़ के तरह बाहरी रहता है ये भी। और विक्षिप्त भूमिका वाला एक होता है, ये क्षिप्त भूमिका वाले भी अधिकतर होते हैं, सूक्ष्म जगत को स्वीकार करने पर भी ये मान लेते हैं कि हमारे वश की बात नहीं है, ये कुछ सब त्याग करके साधु संत बने हुए हैं, ये उनके लिए है। और हम तो वो संसार ये अपने स्थूल जगत में ही विचरण करते रहे, ये हमारे वश की बात नहीं है, ऐसा समझ करके आगे प्रवेश ही नहीं करते। और विक्षिप्त भूमिका एक चित्त की होती है, वो विक्षिप्त भूमिका वाला चित्त स्थूल का संस्कार उसमें अधिक रहता है, लेकिन सूक्ष्म जगत का भी अस्तित्व स्वीकार करता है और थोड़ा थोड़ा जा करके उससे संलग्न भी होता है। चित्त सूक्ष्म जगत के प्रति संलग्न भी होता है, वो एक क्षण के अल्प हिस्से में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं सूक्ष्म जगत स्थूल जगत से विलक्षण है भी और वहां पहुंचता भी है, एकाध क्षण के कुछ हिस्से में रह करके फिर आता है, ज्यादा टिकता नहीं है वहां, सूक्ष्म जगत से परिचय है, एक है खाली है लेकिन कोई परिचय नहीं, अपरिचित ऐसे अज्ञात में स्वीकारा हुआ, इसको सूक्ष्म जगत से परिचय रहता है। तो परिचय है तो प्रयत्न करने से वहां पर फिर रह सकता है चित्त जाकर के। तो माना जाता है ये जो तीसरी कोटि वाला है चित्त जिनका, उन्हें ही योग का अधिकारी माना गया है, वे चाहेंगे प्रयत्न करेंगे तो जिस सूक्ष्म जगत के प्रति परिचय है उनका, सूक्ष्म जगत के साथ आभ्यंतर जगत के साथ स्थूल जगत से अभ्यंतर जो सूक्ष्म जगत है उसमें अपने चित्त को स्थिर करना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेंगे, प्रयत्न करेंगे तो प्रयत्न से मन वहां पर रह सकता है। तो ऐसा चित्त है जिनका, उन्हें कहा जाता है विक्षिप्त भूमिका वाला चित्त वाले, और वे इस आंतरिक जगत की यात्रा करने के लिए अधिकारी माने गए। आजकल अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जा रहे हैं इन लोगों को कहते हैं, लेकिन सबको नहीं ले जाते, पहले ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग में जो सफल होते हैं उन्हीं को उस अंतरिक्ष यान में बिठा करके ले जाते हैं। तो वो भी स्थूल जगत की ही तो यात्रा है, वहां कोई सूक्ष्म जगत थोड़ा ही है, लेकिन वहां की यात्रा करने के लिए भी सब अधिकारी नहीं माने जाते। ऐसे आंतरिक जगत की यात्रा का अधिकारी ये तीसरी भूमिका वाला चित्त जिन मनुष्यों का है वे मनुष्य हैं अधिकारी। फिर वे प्रयत्न करते करते सूक्ष्म स्थूल से अपने चित्त को निकाल करके जिस सूक्ष्म जगत के साथ उनका परिचय है उस जगत में ही अपने चित्त को ज्यादा से ज्यादा समय तक टिकाए रखते हैं, बनाए रखते हैं, का मतलब ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते करते फिर ध्यान की परिपक्व अवस्था मानी जाती है एकाग्र अवस्था, वो एकाग्रता आ जाती है उनके चित्त में, और फिर एकाग्रता के बाद निरुद्ध अवस्था। अभी एकाकार चित्त वृत्ति है, एक ध्येयाकार, फिर उस वृत्ति का भी निरोध करके रखना है आपको अपने स्वरूप में ही, फिर निर्वृत्तिक चित्त हो जाए, निर्विकल्पक समाधि में पहुंच जाए तो निरुद्ध अवस्था आ जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग दिखते हैं स्थूल जगत में ही जिनका चित्त विचरण करता है ऐसे, इसलिए श्रुति ने कहा तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। तो ये आचार्य पिप्पलाद जी कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो दो ऋषि हैं कबंधी और भार्गव, इनके प्रश्नों का जो विषय था वह स्थूल था और उससे भी सूक्ष्म अर्थ विषय तुम प्रश्न कर रहे हो वह प्रश्न है अति प्रश्न, जिस प्रश्न का विषय सूक्ष्म है उस प्रश्न को कहा जाएगा अति प्रश्न, यानी सूक्ष्म अर्थ विषय को प्रश्न वो आप कर रहे हो। अति प्रश्नान पृच्छसी, यानी सूक्ष्म अर्थ को पूछ रहे हो। सहसा प्राण का ही स्वरूप ध्यान में नहीं आता, समझ में नहीं आता, और तुम तो ये निश्चित कर चुके हो कि प्राण भी प्रकृति और पुरुष से विलक्षण होने के कारण सादी है, दो ही पदार्थ अनादि हैं और बाकी तो सब सादी हैं। सादी है तो उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं तो उनको भी उत्पन्न करने वाला कोई न कोई है, तो प्राण भी सादी पदार्थों के कोटि में आता है, उत्पन्न होता है, तो उसका भी कोई न कोई उत्पादक है, वो कौन है, किससे उत्पन्न होता है, ऐसा जो तुम प्रश्न कर रहे हो ये तुम्हारा प्रश्न सूक्ष्म अर्थ विषयक प्रश्न है। ऐसी प्रश्न की प्रशंसा कौशल्य के आचार्य पिपला जी ने की कि अति प्रश्नान पृच्छसी, और प्राण का उत्पादक है ये तस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि मंत्र के अनुसार, मुंडक मंत्र है ये तस्मात् शब्द से ग्राह्य है परमात्मा, तो परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है ये मुंडक उपनिषद में बताया गया है, और परमात्मा को श्रुति कहती है वह अनु अनियान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और तत्संबंधी कार्य विषय प्रश्न कर रहे हो इसलिए ये सूक्ष्म अर्थ विषय प्रश्न तुम्हारा है, और प्राण की उत्पत्ति विषय प्रश्न ब्रह्म से जुड़ा हुआ होने से तुम ब्रह्मिष्ठ हो। ब्रह्मिष्ठ हो का अर्थ है कि ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार करते हो, कारण ब्रह्म का अस्तित्व तुम प्राण के कारण का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो, इसलिए तो प्राण का कारण कौन है ये पूछ रहे हो, और प्राण का कारण है ब्रह्म, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न को देख करके सुन करके प्रसन्न हुआ हूं और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। ब्रह्मिष्टोऽसि इति तस्मात्, यानी उस कारण से अहम ब्रवीमि, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तो तृतीय मंत्र कंडिका में ये जो कौशल्य के छह प्रश्न हैं उसमें से दो प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये प्राण किससे उत्पन्न होता है पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न इस शरीर में किससे आता है, शरीर में प्रवेश का निमित्त प्राण के कौन है, इन दो प्रश्नों का उत्तर तृतीय खंडिकात्मक वाक्य में दिया जा रहा है। आत्मनः एष प्राणो जायते यथेसा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतत् आततम् मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे। तो ये कहते हैं पहला जो वाक्य है पहले प्रश्न का उत्तर है, पहला प्रश्न था कुत एष प्राणो जायते, तो कहा आत्मतः आत्मनः एष प्राणो जायते, तो आत्मा है यहां पर प्रश्न उपनिषद को व्याख्यान माना जाता है ना, और व्याख्या है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद व्याख्यान है, तो मुंडक उपनिषद में जो प्राण के कारण को बताने वाले दो मंत्र हैं उन मंत्रस्थ परमात्मा की कई एक विशेषताएं बताइए, प्राण का कारण तो है परमात्मा ही, परमात्मा से उत्पन्न होता है प्राण, ये बताना है आत्मनः यानी परमात्मनः। और उस परमात्मा को बताने के लिए कई एक विशेषताएं परमात्मा की बताते हुए मंत्र ने कहा दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाह्यभ्यंतरो ह्यजह अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात परतः पर ये तस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये जो दो मंत्र हैं इन मंत्रों में बताया गया प्राण का कारण परमात्मा है, परमात्मा ने प्राण को उत्पन्न किया है। वो परमात्मा प्राण का कारणभूत कैसा है तो कहा कि वो दिव्य है। दिव्य है यानी स्वयं प्रकाश है, वहां दिव्य शब्द का अर्थ है स्वयं प्रकाश। और अमूर्त है का अर्थ है वह साकार नहीं है, अव्यक्त है, नाम रूप से अनभिव्यक्त है। और वह कैसा है तो कहा अमूर्त पुरुष है यानी पूर्ण है, देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है, पूर्णत्वात् पुरुष और पुरुषेनात् पुरुष। पूर कहते हैं शरीरों को और इसके अंतर्यामी के रूप में सारे शरीरों में अंतर्यामी के रूप में अंतरात्मा के रूप में स्थित है, इसलिए भी पुरुष है। तो दिव्य अमूर्त पुरुष और वह बाहर भी है अंदर भी है, व्यापक है ना, इसलिए सब आय अभ्यंतर और उत्पन्न नहीं होता है। प्राण को उत्पन्न करने वाला ये पूछो कि वो किससे उत्पन्न होता है, प्राण तो उत्पन्न होता है परमात्मा से, और परमात्मा किससे उत्पन्न होते हैं तो कहा कि वो अजह, वो अज है, न जायते इति अजह, वो उत्पन्न नहीं होता। तो सब आय अभ्यंतरो यजह, और वो प्राण को उत्पन्न करता है लेकिन स्वयं कैसा है अप्राण है, अमना है। परमात्मा के प्राण है कि नहीं, जैसे जीव के प्राण है ऐसे परमात्मा के भी प्राण होंगे तो वो भी निकल जाएंगे कभी न कभी, और प्राण निकल जाते हैं तो मृत्यु मानी जाती है, तो फिर परमात्मा की भी मृत्यु माननी पड़ेगी प्राण को यदि समना मानेंगे, सप्राण मानेंगे तो। इसलिए कहा कि वो अप्राण है, प्राणों को उत्पन्न करता है और जीवों को दे देता है, जीवों की उपाधि के रूप में दे देता है, इसलिए स्वयं तो अप्राण है और प्राणों को धारण नहीं करता, इसलिए जीव नहीं कहा जाता। जीव शब्द का अर्थ ही होता है जो प्राणों को धारण करता है, प्राणों में अपना स्वामित्व अभिमान करता है जो, उसे सब प्राण कहते हैं, वो करता है जीव, इसलिए जीव को कहा जाता है सब प्राण। और परमात्मा है अप्राण, तो जैसे उसका प्राणों में ये मेरे हैं ऐसा अभिमान नहीं है, ऐसे मन में भी अभिमान नहीं है, भले मन को उत्पन्न करता है लेकिन वो दूसरों को दे देता है उत्पन्न करके। बिल्डर भवन बनाता है, फ्लैट बनाता है, दूसरों को बेचता है, अभिमान नहीं करता कि ये मेरा है, रजिस्ट्री हो गई तो ये इसका है। ऐसे भगवान भी ये मकान बना बना करके दे देते हैं दूसरों को, और जो खरीदता है वो अभिमान करता है ये मेरा है और मेरा है, ऐसा अभिमान परमात्मा का नहीं होता, इसलिए उसे अमना कहा जाता है। उसने मन को भी बना लिया प्राण के तरह लेकिन ये मन मेरा है ऐसा अभिमान नहीं करता, अमना है। अप्राणो ह्यमना और शुभ्र है यानी नित्य शुद्ध है, उसमें कोई आगंतुक अशुद्धि भी नहीं और स्वाभाविक अशुद्धि भी नहीं है, शुद्ध है। अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात् परतः पर, अक्षर एक गीता अक्षर शब्द का अर्थ अव्याकृत भी होता है, प्रकृति भी होता है। जैसे गीता में अक्षर पुरुष का अर्थ है माया, प्रकृति अव्याकृत, वही यहां पर भी है अक्षरात परतः। तो परतः अक्षरात परम का अर्थ है अव्यक्तात पुरुषः परः, जो कठोपनिषद में कहा गया। तो पर अक्षर है अव्यक्त, और उससे भी जो पर है महत्तत्व की अपेक्षा पर है अव्यक्त, और उस अव्यक्त से भी पर है पुरुष, दिव्य पुरुष परमात्मा, और उसी को एतस्मात् जायते प्राण। इसमें एतस्मात् शब्द से लिया जाता है, और यहां प्रश्नोपनिषद में आत्मनः एष प्राण जायते, इसमें आत्मा शब्द से उस वस्तु को लेना जिसका मुंडक उपनिषद में दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्यभ्यंतरो ह्यजः इत्यादि मंत्र में दिव्यत्वादि स्वरूप बताया गया है। उस परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है, आत्मनः एष प्राण जायते। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है। द्वितीय प्रश्न की के उत्तर रूप वाक्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरिओम।